अध्याय 13। जब इफ्रेम का स्वर सुनाई देता था तो सब लोग कांप उठते थे। वो तो महान ही था, किंतु बाल देवता की पूजा कर उसने अपराध किया और इससे वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और अब उनका पाप बढ़ता ही जा रहा है। वे ढली मूर्तियां मनुष्यों की कृतियां बनाते हैं, चांदी से कुशल कारीगर उन्हें गढ़ते हैं। वे कहते हैं, इनकी पूजा करो, मनुष्य बछड़ों की मूर्तियां चूमते हैं। इसलिए वे प्रातःकाल के कोहरे की तरह और ओस की बूंदों की तरह लुप्त हो जाएंगे, खलिहान से उड़ाए गए भूसे के समान या खिड़की से निकलने वाले धुएं के समान वे विलीन हो जाएंगे। मिस्र के निर्वासन के समय से मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर रहा हूं, मेरे सिवाय तुम किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानते, मेरे सिवा कोई अन्य उद्धारक नहीं। मरुभूमि में मैंने ही तुम्हारी रक्षा की, उस सूखे प्रदेश में मैंने ही उनको खिलाया पिलाया, और वे खा पी कर तृप्त रहते थे। तब वे घमंड से फूल गए और मुझे भुला बैठे। अच्छा, तो मैं उनके साथ सिंह का सा व्यवहार करूंगा, चीते की तरह मैं मार्ग में घात लगाकर बैठा रहूंगा, अपने बच्चों को छिन जाते देखकर जैसे रीछनी शिकार पर टूट पड़ती है, वैसे ही मैं उन पर टूट कर उनके कलेजे फाड़ डालूंगा। सिंहनी की तरह उनको झट से चट जाऊंगा, जंगली जानवर बनकर मैं उनको निगल जाऊंगा। इज़राइल, मैं तुमको नष्ट करूंगा, और कौन तुम्हारी मदद करने आएगा? अब तुम्हारा वो राजा कहां रहा जो तुमको बचा रहे? वे सभी नेता कहां हैं जिनकी तुम शरण जाओ? तुमने मुझसे कहा था ना, मुझे राजा और सामंत दे। मैंने क्रुद्ध होकर तुमको राजा दे दिए और फिर क्रोधित होकर उन्हें वापस भी ले लिया। इफ्रेम के अपराधों की गठरी बांधी हुई है, उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं। प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, किंतु मूर्ख शिशु को समय का क्या पता, वो निकलता नहीं। क्या मैं फिरौती चुकाकर अधोलोक के वश से उन्हें बचाऊं? क्या मैं मृत्यु से उनका उद्धार करूं? काल, तेरी महामारियां कहां हैं? अधोलोक, कहां है तेरा विनाश? मेरा तो कलेजा पत्थर हो गया है। इफ्रेम नरकुल झुरमुट के बीच फले फूले तो सही, किंतु पुरवाई बहेगी, उजाड़ से प्रभु ईश्वर की सांस, उसके झरने बंद हो जाएंगे, उसके सोते सूख जाएंगे, उसका समस्त धन वैभव लुट जाएगा।